ओम शांति, ओम शांति। बाबा की आज की मुरली है सर्विस सर्विस सर्विस। तीन बार बाबा ने सर्विस 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 कहा है। तो सर्विस कैसे करनी है, किसकी करनी है, क्यों करनी है, ये सारी बातें आज बाबा ने बताई है। कैसे बाबा का परिचय सबको देना है, वास्तव में यही तो समय की मांग है, क्योंकि भगवान कौन है ये पता ही नहीं है किसको। ढूंढ जरूर रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन उस पिता का परिचय न होने के कारण दुखी है। तो कैसे उन आत्माओं को सुखी बनाओ, उनको शांति दो, आज बाबा की सारी मुरली सर्विस पर है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम क्या थे। खुशी अगर कम हो जाए तो उस समय वो याद करो, हम क्या थे, बाबा ने हमें क्या बनाया था कल्प पहले। हम तो राव थे, फिर रंग कैसे बने। राव थे, विश्व के मालिक थे, राजा थे, विश्व महाराजन महारानी थे, सारे विश्व पर हमारा राज्य था, फिर ये रंग कैसे बन गए, उसका इतिहास क्या है। रंग बनने का भी इतिहास है ना, कैसे बने, वो सारी बातें आज बाबा ने बताई है। क्योंकि बाबा फिर से हमें राव बनाने आए हैं, माना राजा बनाने आए हैं। तो कैसे बनेंगे राजा, फिर वो भी बाबा बताते हैं। कैसे बनेंगे राजा फिर से, प्रजा दास दासी वो तो बन ही जाएंगे, लेकिन राजा कैसे बनेंगे, जब पूरी पवित्रता होगी। तो आज बाबा ने पवित्रता पर भी जोर दिया है, बिना पवित्रता के राजा ही थोड़ी मिलेगी। और उसमें भी ऊंच पद, वो तो संकल्प, तो क्या स्वप्न में भी अपवित्रता न हो, तब वो राजा ही मिलेगी। और उसके लिए बाबा कहते हैं, हाँ राखी बांधो, उसके लिए बाबा कहते हैं राखी बांधो। तो अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, हाँ हमें वो राखी प्रतिज्ञा फिर से दोहरानी है, क्योंकि बीच बीच में माया कैसे थप्पड़ मार देती है। प्रतिज्ञा करते हैं फिर माया थप्पड़ मारती है, तो प्रतिज्ञा को फिर तोड़ देते हैं, तो इसीलिए बाबा फिर रिवाइज कराते हैं। तो आज की बाबा की मुरली इन्हीं तीन बातों पर है, सर्विस और स्मृति और उसके लिए पवित्रता। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, आज 22/8/2026 है। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले। अब सेवा कैसे करनी है, पहली बात विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। क्यों बाबा कहते हैं बड़ों बड़ों की ओपिनियन लो, क्योंकि वो ओपिनियन बुक बाबा कहते हैं बनाओ, तो लोग पढ़ेंगे कि अच्छा इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा है, इसने ये लिखा है, तो वो बड़े बड़े क्या लिखते हैं वो पढ़ेंगे लोग, तो उनकी भी आंखें खुलेगी। अनेक आत्माओं का कल्याण करो, फिर दूसरा काम क्या करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। उस समय तो प्रदर्शनियां बहुत बाबा बनवा रहे थे, तो बाबा कहते थे ये प्रदर्शनियां चारों तरफ लगाओ। सेंटर्स तो छोटे थे, तो वहां तो इतना नहीं कर पाते थे, तो बाबा कहते थे बड़े बड़े ट्रस्टियों से मिलो और उनसे हॉल मांगो और उन हॉलों में प्रदर्शनियां करो। बहुत की बाबा के श्रीमत अनुसार बहुत सेवा हुई है, तभी तो देखो आज उस बेहद सेवा का हम परिणाम भी देख रहे हैं, कैसे संदेश पहुंचता ही जा रहा है। तो विशाल बुद्धि बन बड़ों बड़ों की ओपिनियन लो, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है, याद करो, बाबा स्मृति दिलाते हैं, जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे। क्या स्मृति आई है? स्मृति आई है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, राजा थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव यानी राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार भी सुनाते हैं। राव थे तो कैसे थे, फिर रंक कैसे बने, उसका इतिहास क्या है, वो भी समाचार के रूप में सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अब जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बाबा मुझे शांति दो, बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, याद आएगा बाबा ने सब दिया था, अब फिर से दे रहे हैं, बस पुरुषार्थ करो। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। अभी तो हम ये गीत नहीं गाएंगे ना, पग पग ठोकर बहुत खाई भक्ति मार्ग में, नयनहीन थे, अभी बाबा ने ज्ञान का नेत्र दिया है, स्मृति दिलाई है, तो पग पग ठोकर नहीं खाते। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना अब बहुत सहज है। बाबा से मिलना, बाबा से वर्षा लेना अब बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि सब का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंद ये दो अक्षर हैं, तो बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंद में हैं। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। मिसाल क्या देते बाबा, मुक्त करते वर्षा देते, उसका मिसाल बाबा देते हैं, जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं कि ये वारिस पैदा हुआ, तो बाबा के पास जन्म लिया तो वारिस बन गए, बाबा का अधिकार मिल गया। जैसे ये समझना सहज है कि बच्चा पैदा हुआ और वारिस बन गया, ये समझना सहज है, वैसे वो भी सहज है कि हम बाबा के बच्चे बने हैं तो वारिस हैं। बच्चे कहते हैं बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। ये तो हर एक जानते हैं क्या कि नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। रचयिता तो मानते हैं ना परमात्मा को, तो नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है, वो हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे और आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं, अब क्या सुनाते हैं अपना अनुभव कि हमने बीके द्वारा सुना, कैसे ज्ञान में आए अपना अनुभव सुनाते हैं ना बच्चे, कि हमने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा सुना कि दो बाप हैं। अब ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि दो बाप है। अब वो कहेगा ये क्या कह रहे हो, दो बाप है, हमारा तो एक ही बाप है। वो तो लौकिक को ही बाप समझते हैं, तो हमारे दो बाप है। फिर उनको अगर तीन बाप कहो तो और आश्चर्य खाएंगे, ऐसे कैसे होगा, पिता तो एक ही होता है। तो ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि दो बाप है। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है कि जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में भी आएगा। बाबा के बच्चे बनने होंगे, देवता बनने होंगे, उनको झट स्मृति में आएगा। बरोबर जो यहाँ बातें सुनते वो ठीक है, उनको झट स्मृति में आएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी, चलो स्मृति में आया, अच्छा लगा, शांति मिली, परंतु फिर क्या होता है, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए फिर विस्मृत भी कर देती है। स्मृति भी आई, फिर माया ने थप्पड़ लगाया, फिर विस्मृत कर दिया। इसमें बच्चों को बड़ी खबरदारी रखनी है कि माया विस्मृत न कराए। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। स्मृति भी रखनी है और फिर पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई, किसने प्रतिज्ञा कराई? काम तो महाशत्रु है ना, तो बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो। भगवान के आगे प्रतिज्ञा की, क्या, कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा। सबने प्रतिज्ञा की है ना, ये कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जल कर खत्म हो जाएंगे। तो बाप गारंटी करते हैं आधा कल्प के पाप सब खत्म हो जाएंगे, मुझे याद करो, तो ये गारंटी बाप करते हैं। परंतु ये तो बच्चे समझते भी हैं कि बाप गारंटी करते ये तो बात ठीक है, ठीक है बाबा जो गारंटी करते हैं कि मैं तुमको पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा, ये तो बाबा गारंटी करते हैं, तो ठीक है। तो बाबा गारंटी का कौन सा मिसाल देते हैं, जैसे सोनार वो भी गारंटी करेगा ना, अब किस उसको आप सोना दो, अब उसमें खाद मिली हुई है तो उसको कहो कि भाई ये खाद निकाल करके हमको ये सच्चा सोने का जेवर बनाना है, तो सोनार भी गारंटी करेगा ना कि हाँ बरोबर हम इस पुराने जेवर को नया बनाएंगे, वो गारंटी करता है सोनार। उनका तो ये काम ही है सोने को फिर गला करके उसको शुद्ध बनाना, फिर जेवर बनाना, ये सोनार का तो काम ही है। तो भगवान भी तो सोनार है ना, हम सच्चे सोने थे फिर खाद मिल गई, अब कैसे खाद निकालनी है, फिर कैसे सच्चा सोना बनना है, तो ये बाबा बताते हैं। तो उनका तो ये काम है, आग में डालने से जरूर वो सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है। कल बाबा ने कहा ना सीता को भी आग से पार करना पड़ा, तो ये कौन सी आग है, योग अग्नि है, जिससे पार होकर के हम सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा में भी खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, है तो बहुत सहज, हाँ सब सहज है समझना। चित्र भी इसलिए बनाए हैं इस पर सहज समझा सको। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के नक्शे होते हैं, तुम्हारे भी ये नक्शे हैं, हमारे चित्र हमारे नक्शे हैं, तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर ये रास्ता बताते हैं, और कोई पतित से पावन बना न सके। नैनहीन दुखी मनुष्य है, तभी तो गीत गाते हैं नैनहीन को राह दिखाओ, तो बाबा कहते नैनहीन दुखी मनुष्य है। तुम बच्चे जानते हो पहले दो युगों में दुख होता नहीं, न भक्ति होती है, न दुख होता है न भक्ति होती है पहले दो युगों में, वो है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कॉन्ट्रास्ट है ना। अभी के मनुष्य कैसे हैं भारत के, और सतयुग में भारत के मनुष्य कैसे थे, कितना कॉन्ट्रास्ट है। परंतु ये और कोई, हाँ बाबा कहते हैं और कोई समझते नहीं है, ये कितना कॉन्ट्रास्ट हो गया भारत के पहले के मनुष्य और अभी के मनुष्यों में। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। अब बाबा ने इतिहास सुनाया, क्योंकि बाबा बॉम्बे में जाते थे तो वहाँ तो बहुत धनी लोग भी थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बाबा जाते थे, नर नारायण का मंदिर, विष्णु का मंदिर बहुत बड़ा है वहाँ, तो वहाँ जाते थे तो जो धनी लोग थे, ट्रस्टी लोग थे, तो वो मूर्तियों को सच्चे सच्चे जेवर पहनाते थे, बहुत कुछ करते थे। तो वो बाबा बताते हैं बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था, हीरो का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है जिसने हीरो का हार लक्ष्मी नारायण के लिए बनाया था। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस ट्रस्टी की बात बाबा कर रहे हैं, वह धनवान था तो उसने ये सब किया। उस समय कितना धन होगा, फिर बाबा द्वापर की बात ले जाते, कैसे धन कितना था। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर करके ले गए, भारत में कितना अथाह धन था। हाँ चले जाओ फिर सतयुग में, कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो हमारा भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, कुबेर का खजाना, हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते थे। अभी वो चीजें है नहीं, अभी सच्चे हीरे तो देखने को भी नहीं मिलते ना, अभी वो चीजें है नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है, अभी है लंदन में वहां पर वो ये एक म्यूजियम है, सारे हीरे जवाहरात जो भारत से लूटे वो वहां पर प्रदर्शनी में है, कई ताज बने हैं, बहुत कुछ वहाँ है। तो है सब भारत के लूटे हुए, लेकिन वो क्या कहते हैं, ये भारत को भेंट मिले ऐसे कहते हैं, पर सब लूटा है भारत का। तो बाबा कहते हैं अभी तो क्या हाल हुआ है, तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरण करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरण करते रहेंगे हम बाबा से क्या ले रहे हैं, ये सिमरण करो क्या ले रहे हैं बाबा से, हाँ कुबेर का खजाना भरपूर ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो पहले एक धर्म एक राज्य एक ही मत एक ही भाषा थी, सब सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे, फिर हिस्ट्री बताते हैं बाबा, आपस में फिर पीछे लड़ने झगड़ने लगे, और क्या हो गया, लड़ने झगड़ने लगे तो भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। कितने टुकड़े हो गए, छोटे छोटे रियासतें, सबका अपना अपना राजा बन गया। पहले तो एक ही विश्व महाराजन था, और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का भी नाम निशान नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अब स्मृति आई है, आगे सारी स्मृति, क्या थे हम, क्या हमारा भारत था, कितना ऊंचा था। तुमको अपनी भी स्मृति आई है, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति आती है। हमको विस्मृति होती है, फिर बाबा स्मृति दिलाते हैं तो आ जाती है स्मृति, हम क्या थे। पहली एकज भूल यही हुई है। कैसे विस्मृति हुई, पहली पहली भूल क्या हुई, पहली एकज भूल हुई है जो रचयिता और रचना को भूल गए हैं। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी। हाँ, सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, शुरू में तो राजे ही है, द्वापुर में भी राजा ही महाराजा ही थे। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं। सतयुग त्रेता में ऋषि मुनि कोई नहीं होते, राजे महाराजे होते हैं। ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं, ऋषि मुनि तो द्वापुर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, वो भी भले परिवार में रहते थे परंतु खान पान उनको सब भोजन राजा ही पहुंचाते थे। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, राजाएं संभाल करते हैं क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। ऋषि मुनि कोई सन्यासी टाइप नहीं थे जो जंगलों में रहते थे, वो भी परिवार में रहते थे लेकिन पवित्र रहते थे। तो राजा महाराजा उनके इनकी परवरिश करते थे, राजाएं संभाल करते हैं क्योंकि फिर भी संन्यास करते है ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, ऋषि मुनि तो द्वापुर से आए हैं, प्राचीन तो राजा महाराजा थे ना। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वो तो द्वापुर से आते हैं ऋषि मुनि, वो राजाओं के आधार पर चलते थे। कहते हैं हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अब शास्त्र आदि जो भी लिखे वेद व्यास के लिए कहते हैं, फिर भी उसने क्या कहा, वेदों में क्या है, नेति नेति, ईश्वर का अंत नहीं पाया। तो बाबा कहते वो भी द्वापुर से आते हैं, कहते हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। तो बाप कहते हैं ये खुद राजाएं भी नहीं जानते, सतयुग के राजाएं भी कहां जानते रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ऋषि मुनियों ने भी यही कहा, वेदों में यही लिखा। तो इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। फिर बाबा सेवा की बात कह रहे हैं, उनको तुम लिख सकते हो, इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है। बिरला वालों को लिखो, हाँ बहुत लिखा भी है, बाबा कहते थे तो उनको लिखते भी थे। उनकी जीवन कहानी का आपको पता है, उन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं, हम आपको सब राज बता सकते हैं, ऐसा उनको लिख सकते हो। हाँ, वो बिरला वालों को या जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर या जो मंदिर बनाते हैं उनको लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी आपको बताएंगे, उन ट्रस्टियों को कहो। शिव के मंदिर भी जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे, कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। अभी सेवा की कई युक्तियां बाबा बताते हैं, तो बड़ों बड़ों को समझाएं, ये बाबा कहते कोशिश करो। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है। अब कोई बड़ा VIP प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या भी कोई मिनिस्टर जो भी सुनाएंगे वो न्यूज में आ जाएगा, छोटे मोटे लोग बोलेंगे तो क्या न्यूज में आएगा। तो बड़ी बड़ों बड़ों को समझाएंगे समझाएं, बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है, गरीब लोग झट सुन लेते हैं, आवाज होता है और गरीब लोग तो झट सुन लेते हैं। मदद तो बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों का लिखवाना है, क्योंकि उनों का आवाज भी मदद करता है। मीडिया वाले उनको सुनते हैं, फिर अखबारों में डालते हैं, टीवी में डालते हैं, क्योंकि उनों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में फिर बाबा और भी बात उसमें कहते हैं, बड़े बड़े चलो बोलते तो हैं, कहते हैं, वास्तव में वो इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। भले बड़े आते हैं, लेकिन चलो उस समय तो कहा, फिर जहां जाए वहां पर वो कहे वो तो करते नहीं है, खाली उस समय कह दिया, चलो एक बार अखबार में आ गया बस, फिर जहां जाए वो ऐसे कहे ये तो होता नहीं है। तो वास्तव में वो इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, चीफ मिनिस्टर गवर्नर आदि फिर ओपिनियन भी देते हैं, लिखते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताती है, वो ऐसे लिखते भी हैं। परंतु ईश्वर क्या चीज है वो खुद भी कुछ नहीं समझते हैं, भले लिख देते ईश्वर का रास्ता ये बहुत सहज बताती, पर ईश्वर कौन है उनसे पूछो, उसको भी पता नहीं, ये कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। अभी तो देखो संत सम्मेलन हुआ ज्ञान सरोवर में, जो भी आए उन्होंने क्या सुंदर ओपिनियन सुनाए, क्या सुंदर उन्होंने बोला। फिर शांतिवन गए तो शांतिवन में भी एक एक ने अपना इतना अच्छा ओपिनियन सुना, भी वो तो फैल गया ना। तो बाबा कहते सन्यासी भी आएंगे, राजाएं महाराजाएं भी आएंगी, अंत का ये समय, तो हम देख रहे हैं कैसे ये भी आ रहे हैं। तो शांति मिलने का मार्ग अच्छा है ऐसे लिखते हैं, परंतु खुद नहीं समझते हैं। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल है वो ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, कैसे सेवा करो बाबा कहते एडवर्टाइज करनी है, हाँ ये होता है ना मार्केटिंग करते हैं ना, कैसे एडवर्टाइज करना है, कैसे ये सब करना है, तो बाबा भी ये सिखाते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए, भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल हो जो उनसे लो और वहाँ एग्जीबिशन करो, अखबार में पढ़ जाए कि इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है, जिनको समझना है वो आकर के समझे, हाँ ऐसे लिख दो, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना, अभी तो कितनी सर्विस हो रही है, उस समय तो चीटी मारक की सर्विस थी बाबा के समय, इसलिए बाबा ने मुरलियों में कितना बच्चों को उमंग दिलाया। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना, बाप सब बच्चों को कहते हैं क्या प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो, बाबा तैयारी करा रहे हैं, चित्र बाबा बनवा रहे हैं तो तैयारी करा रहे हैं कैसे उनकी सेवा हो, चाहे प्रदर्शनियां लगाओ, बाबा तैयारी करा रहे हैं क्या, उस समय ये फ्लैग्स वगैरह वो कुछ नहीं था, तो इसलिए फट फट से तो चित्र बनते नहीं थे, पेंटिंग करते थे। कृष्णा नगर दिल्ली में वहां पर हमारे आत्म प्रकाश भाई प्रेस के प्रिंटिंग प्रेस के वो सब करवाते थे, तो बाबा उनको कहते थे जल्दी जल्दी आर्टिस्ट को बिठाओ, पेंटिंग कराओ और फिर सेवा में लगाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, बाबा तैयारी करा रहे हैं, ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, प्रजा की रचना रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं बाबा, ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। सतयुग में ब्राह्मण नहीं होंगे, सतयुग में तो यही ब्राह्मण देवता बन जाएंगे, तो ब्राह्मण धर्म कहाँ है, संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब हैं जब पति दुनिया को पावन बनाना होता है, ये भी जानते हो। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये कोई नहीं समझते। ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, लेकिन कब परमात्मा वो रचना रचते ये नहीं समझते। ये समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं। अभी तुम समझते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ता बन जाते हो। सूक्ष्म वतन में कैसे जाते हो, पवित्र बन फरिश्ता बन जाते हो, फिर सूक्ष्म वतन वासी बनते हो, साक्षात्कार भी करते हैं। बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है, वहाँ मूवी चलती है। गुलजार दादी को जब पहला सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ, उसने सारा बताया कैसे वहाँ मूवी चलती है, आवाज नहीं है, बाबा होंठ चला रहे हैं लेकिन संकल्प रीड कर सकते हैं। जैसे स्वप्न में कैसे रीड करते हैं ना, वैसे होता है। स्वप्न में भी कोई आवाज थोड़ी होता है, अंदर ही अंदर स्वप्न देख रहे हैं और एक दो को समझ रहे हैं, तो साक्षात्कार भी इसी प्रकार का है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ता बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। वो है ही सूक्ष्म वतन, क्या है, मूवी वर्ल्ड, आवाज नहीं है, होंठ चलते हैं, समझ जाते हैं उसी से, संकल्प कैच कर लेते हैं, आवाज नहीं है, वो है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बायोस्कोप भी देखा था पहले, ये जो अभी सिनेमा जो है, पहले आवाज नहीं होता था, जो भी चलता था सब होंठ केवल चलते थे बस, आवाज बिना, लेकिन समझ जाते थे। तो बाबा कहते हैं मूवी, हाँ अभी वो है मूवी वर्ल्ड, तुमने मूवी बायोस्कोप भी देखा था, अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती है, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। अब सूक्ष्म वतन की भाषा क्या होगी, यही भाषा होगी ना, हिंदी भाषा होगी ना, तो और होंठ ही चलते हैं और समझ लेते हैं, तो वो भी जरूर कुछ भाषा होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है, फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और ये है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो, कहाँ, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो, बाप यहाँ आते हैं, तो यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो पियर घर और ससुर घर। सूक्ष्म वतन में पियर घर वाले जाते हैं और ससुर घर वाले उनसे मिलते हैं, देवताएं और ब्राह्मणों का मिलन होता है सूक्ष्म वतन में। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं, बाप और दादा। शिव बाबा भी पिता है तो ब्रह्मा बाबा भी पिता है, तो दोनों पियर है, हाँ दो पियर घर है हमारे, या दोनों तुम्हारे पियर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों पर, बच्चों को गुलगुल फूल बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा। कराची में एक पठान आता था, वो सामने खड़ा होता था, बाबा के सामने खड़ा होता था, बाबा उनको दृष्टि देते थे और देखते देखते वो गिर पड़ता था, एकदम ध्यान में चला जाता था। पूछा जाता था कि क्या देखा, तो वो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, ऐसे वो कहता था पठान, खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने मुझे फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं, अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है, ये है कांटों का जंगल और वो है सतयुग फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है, चक्र का विस्तार तो बहुत है, पर सार रूप में तुम्हारी बुद्धि में है सारा चक्र। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है, सार रूप में बैठा हुआ है सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान। तुम बच्चों ने रचयिता बाप द्वारा रचयिता और रचना को जाना है, ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे, जैसे ब्रह्मा को रचयिता मानते हैं ना, ब्रह्मा रचयिता, लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे। क्यों? रचयिता तो एक ही है, शिव बाबा है, बलिहारी तो एक ही ना। हाँ, बलि कहेंगे ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, परंतु रचता कौन है, वो तो शिव बाबा है। रचयिता तो एक है, बलिहारी भी एक ही है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की करते, शिव बाबा जब आते हैं तो पहली रचना कौन सी करते हैं, ब्रह्मा की। कैसे करते हैं, उनके तन में प्रवेश करते हैं, तो पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे पहले ब्रह्मा की रचना जिससे ब्रह्मा ब्राह्मण रचे, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की, सतयुग में फिर श्री कृष्ण बनते हैं तो फिर श्री कृष्ण की रचना। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, पांडव जो थे उनको तो क्षत्रिय कहते हैं ना, क्षत्रिय लड़ने वाले तो क्षत्रिय थे, राजा महाराजा सब क्षत्रिय दिखाते हैं द्वापर कलयुग के, तो पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा तो ब्राह्मण चाहिए ना। ये है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे, तुम जानते हो, क्या जानते हम, तुम जानते हो कि हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराने वाला कौन, शिव बाबा, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे श्री कृष्ण द्वारा स्थापना, तो नहीं कहेंगे ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहेंगे, श्री कृष्ण द्वारा स्थापना तो नहीं कहेंगे, वो तो हो भी नहीं सके, श्री कृष्ण तो पहला उस नई दुनिया का प्रिंस है, वो कैसे स्थापन करेगा, वो तो हो भी नहीं सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, क्या श्री कृष्ण, क्या श्री कृष्ण कराते हैं, क्या श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। फिर विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है, अभी भी ये दो फिल्में बनाई है, ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये अच्छी अच्छा वो बनाया, देखा है आप लोगों ने, है बनाया हुआ, ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर फिर विष्णुपुरी के देवता बनेंगे बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना समय लगता है, ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना समय, 1 सेकंड, और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ न सके, ये है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है, आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। सृष्टि चक्र को कौन जानेगी? आत्मा जानेगी शरीर द्वारा। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, ऐसे नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर नॉलेज लेती है शरीर द्वारा। तो बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पर बेहद का राज्य लेना है। तो आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा, ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, फिर खुशी की बात, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार भी आत्मा में हैं, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो, तो दुख किसको होता है? आत्मा को होता है। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। अब बच्चे मधुबन आते हैं तो बाबा कहते हैं सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। हाँ, सागर से रिफ्रेश हो, मधुबन सागर का कंठा है ना, ज्ञान सागर का कंठा है। अब भट्टी वाले आए हैं या जा रहे हैं तो सब रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। भट्टी वाले क्या करेंगे, अब यहाँ जा रहे हैं तो जाकर के पूरा जो भरपूर हुए, इतने क्लासेस मिले, इतना यहाँ का वातावरण मिला, अभी क्या करेंगे जाकर? हाँ, बरसाएंगे ना सबको, बाबा का संदेश देंगे। तो सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस, हाँ, सर्विस सर्विस और सर्विस। आप यहाँ से ये बल भर के जाना, सर्विस सर्विस सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का स्मरण कर अपार खुशी में रहना है। जो बाबा नॉलेज दे रहे हैं उसका स्मरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है, जोर शोर से सर्विस करनी है, विशाल बुद्धि बनकर। दूसरा, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। वहां जाके सब भूल नहीं जाना है, विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना, कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा कपड़ा नहीं पहनना है, ये ड्रेस नहीं पहननी है, वो ड्रेस पहननी है, ये तो अपने हाथ में होता है ना। आज ये पहनूं या वो पहनूं, हम जो चाहें सो पहने, अपने हाथ में होता है वस्त्र क्या पहने। ऐसा ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। अभी अभी साकारी चोला, अभी अभी सूक्ष्म वस्त्र वासी का चोला, फरिश्ता का चोला, ये हमारे हाथ में हो। इस शरीर रूपी वस्त्र में हो ऐसा अनुभव, जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा, अभी अभी साकारी स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर देवता स्वरूप, ये पांच स्वरूपों की स्मृति, ये बाबा कहते हैं उसी से अंत में सर्विस से प्रभाव निकलेगा। स्लोगन, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना, यह अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अब क्या करना है उसमें, ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। ये सब अनुभव करने के लिए सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, संतुष्टता, उसके लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है सभी गुणों की। सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स न हो, बस पवित्रता का ही भाव और भावना हो। भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता। कई बार भाव अच्छा नहीं है लेकिन मुख से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, फिर कहेंगे भाई ऐसे क्यों बोला, वो कहेंगे नहीं मेरा भाव ऐसा नहीं था। अब भाव ऐसा नहीं था फिर बोला क्यों, तो भाव भी अच्छा हो तो भावना भी अच्छी हो, तब कहेंगे भावना में भी पवित्रता। तो पवित्रता ही मुख्य है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ऊपर के बड़े डाइनिंग में
होगा। अच्छा, राखी के दिन चल रहे हैं, रोज कहीं न कहीं रक्षाबंधन का प्रोग्राम हो ही रहा है। आज तो मधुबन में जो पांडव भवन, ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल एवं पीस पार्क के कर्मचारी है, जो यहाँ पर श्रमिक है, जो भी यहाँ कर्मचारी है, उन सब के लिए दादी जी के निमित्त ईश्वरीय सौगात एवं ब्रह्मा भोजन पांडव भवन में ऊपर के डाइनिंग हॉल में रखा है। कितने बजे?
11 बजे
सभी कर्मचारी, जो भी श्रमिक है यहाँ के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल, पीस पार्क, वो सब आएंगे। पहले उनको, उनके लिए थोड़ा भाषण होगा, फिर उसके बाद उनको सौगात मिलेगी और दादी प्रकाशमणि जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।